Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुशी को हम दर दर भटक कर ढूंढते आए। हमने हर दर पर, हर मंदिर में जाकर, हर रिश्तों में जाकर कहीं ना कहीं उसे ढूंढने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमें खुशी मिल जाए। पर रियलिटी तो ये है कि खुशी आपके खुद के गले का हार है। अगर आपको खुशी रहना है तो एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट में भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं, एक जलते दिए में आप खुशी ढूंढ सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप एक दिए को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उसकी जो ऊर्जा होती है वो चारों ओर रोशनी फैला रही होती है। बस हमें उस दिशा की ओर सोचने की ज़रूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो 30 ईयर्स से साइकैट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच
डॉक्टर साहब। यूथ की सीरीज पे हम ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर हम काफ़ी मैच्योर्ड यूथ के साथ डील कर रहे हैं। ऐसे यूथ्स जिनके ऊपर काफ़ी सारे जिम्मेवारियाँ हैं, जिन्हें ज़िंदगी को एक नए ढंग से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुरानी बातों को भूलकर एक नए रिश्ते के साथ में, और रिश्तों में भी कई सारे और रिश्तों के साथ में डील करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने जानने की कोशिश की है कुछ यूथ्स के साथ कि उनके लिए ऐसे समय पर कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें हिंडर करते हैं। आइए सुनते हैं।
ज़रूर
दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों का हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। इसमें जिस तरह अपनी लाइफ में फैमिली के साथ भी टाइम बिताना पड़ता है और वर्किंग के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी पूरा करना पड़ता है, तो उस बैलेंस को हम किस तरह से बनाएं, उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से बैलेंस बना करके चलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और अपनी फैमिली का।
इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हस्बैंड वाइफ में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग वर्किंग हैं तो हमें पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे वर्क के प्रति और हमारी फैमिलीज़ के प्रति। अगर कभी हम अपनी वर्किंग प्लेस से कभी लेट हो जाएं, कभी कुछ हो जाए, तो ये नहीं है कि अगर घर पहुंचे तो हस्बैंड बोले कि हाँ आज क्यों लेट हो गए, क्या हो गया। अगर वो कोऑपरेशन होगा, उनको पता होगा कि ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि आदमी कभी लेट भी हो सकता है, कभी कोई ऐसा काम पड़ सकता है कि कोई लेट है, तो उसको कोऑपरेट करना आना चाहिए। तो इससे हम दोनों सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं।
सो बात बैलेंस की है। बैलेंस तो हम हर चीज़ में मेंटेन करते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली भी ले लो, अनमैरिड लाइफ में उसमें भी तो हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैरिड लाइफ में भी करते हैं, मदर फादर उनके में भी करते हैं, सिस्टर ब्रदर में भी करते हैं। सो ये चीज़ अगर हम आफ्टर मैरिज भी अप्लाई करते हैं तो आई थिंक बैलेंस मेंटेन करना वर्किंग और अनवर्किंग के लिए कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं। सो बैलेंस के लिए थिंग इज़ दैट कि कोऑपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कोऑपरेशन का मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं तो बैलेंस मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है।
बैलेंस का मीनिंग है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करके काम और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम लोग काम को प्रॉपर तरीके से करें और फैमिली को टाइम दें तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे कोई भी फैमिली मेंबर है उनके साथ हमारे एक इजीली रिलेशनशिप चलती है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम निकालना, क्योंकि आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के लिए टाइम नहीं होता। अगर हम काम कर रहे हैं तो बस काम ही कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं कर रहे। अगर हम कुछ किसी के साथ बातचीत करें या किसी के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है कोई दो जन के साथ, तो हम क्या करते हैं कि किसी और को अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ एक इंसान के लिए टाइम है और किसी के लिए टाइम नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एक बार में दो चीज़ नहीं देखते। लेकिन मेरे हिसाब से हम जो हर काम एक बार में ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स है, जहाँ हमारे वर्किंग प्लेस में बहुत जन है जिनके साथ हम कोऑपरेट नहीं कर सकते, जिनके साथ हमारे लिए टाइम नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स बताने का क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस करने के लिए क्या होता है, टाइमिंग निकालना, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल के एक दूसरे से बात करना।
आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कोऑपरेशन इज द वन थिंग दैट प्लेज इंपॉर्टेंट फेस टू बैलेंस योर लाइफ वेदर इट्स मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ. अनमैरिड लाइफ ऑल्सो वी हैव टू कोऑपरेट विद आवर पेरेंट्स विद आवर सिबलिंग्स सिस्टर कजन्स. सो या देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू मी देन ओनली लाइफ कैन बी बैलेंस्ड.
डॉक्टर साहब जब एक ऐसा रिश्ता क्रिएट करते हैं जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी होती है तो छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं. किस तरह से आप उन्हें देखते हैं, किस तरह से आप उनसे बातें करते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने समय तक बातें करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी सामने वाले व्यक्ति के मनोस्थिति पर बहुत ज़्यादा असर डालता है. ऐसे में अपने बारे में ही सोचना और सामने वाले व्यक्ति को उतना तवज्जो नहीं देना, क्या ये गलत है? क्योंकि ऑफिसेज में भी आपका उतना टाइम जाता है, आप जब घर पे आते हैं तो अगर आप अपनी मी टाइम चाहते हैं कि इस समय पे मैं सिर्फ अकेला रहूं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सुबह से आपका जो स्पाउस है वो आपके लिए वेट कर रहा होता है. ऐसे में दोनों का बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, मी टाइम भी क्रिएट किया जाए और साथ ही साथ स्पाउस को भी टाइम दिया जाए, ये कैसे पॉसिबल है?
एक्चुअली जब कोई रिश्ता पनपता है और एक स्टेज के बाद जाकर वो गहरा हो जाता है तो जो मी टाइम है वो अस टाइम बन सकता है.
आई मस्ट से आई लव योर आंसर्स. मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछती हूँ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आपसे एक ऐसा आंसर मिलता है जिसे मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड रहती हूँ. दैट्स अमेजिंग.
नहीं बट ये सच्चाई है
जी,
क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बाउंड्रीज को डिसॉल्व करके दोनों एक यूनिट की तरह से चलेंगे.
बिल्कुल.
जहाँ पे उस यूनिट में डिविजन है
जी
तो वो डिवीजन कहीं ना कहीं बाहर रूप से भी दिखेगी.
बिल्कुल.
लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आपने मेरे लिए क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया, कौन किसको ज़्यादा चाहता है, उस दोनों के बीच में कोई और तो नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह जो बातें उठती हैं.
बिल्कुल.
अगर हम एज अ यूनिट ये देख के चलें कि हम अब बंध गए हैं,
ये तो पहले एक्सेप्ट कर ले,
पहले कर ले. और वैसे बंधना शब्द जो है किसी को अच्छा नहीं लगता.
बिल्कुल.
लेकिन अगर प्यार के बंधन में बंध गए हैं तो कोई बुराई भी नहीं है.
बिल्कुल.
जब हम एक दूसरे के साथ रहने को डिसाइड कर लेते हैं और उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम जिंदगी को एक ही नज़रिए से देखें या शेयर करें जो मेरा नज़रिया है, चाहे आपसे थोड़ा सा अलग हो, तो ज़िंदगी एक अलग रूप से खूबसूरत मोड़ ले लेती है.
बिल्कुल.
फिर उसके बाद जो सो कॉल्ड कमियां हैं, अभाव हैं, कई बार खाना उतना अच्छा नहीं भी बना, कई बार वो आपका बर्थडे भूल गए वगैरह वगैरह, वो चीज़ें भी छोटी लगती हैं.
बिल्कुल.
लेकिन जहां आप ये देखते हैं कि मैंने इतना दिया तुमने कितना दिया, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तुमने किया कि नहीं, पिछले साल मेरा क्या रिज़ल्ट रहा, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा, फ्यूचर में क्या ऐसा ही होगा, जब ये बातें होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर डिविजन होनी शुरू हो जाती है.
सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे कॉमन रीज़न वो ये होता है कि अगर मैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ तो आप ही के लिए तो कमा रहा हूँ. ये थॉट जब आता है तो हम जवाब नहीं दे पाते कि सामने वाले व्यक्ति को क्या कहें, क्योंकि पैसे भी तो ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन समय सबसे बड़ा धन है जो आप किसी व्यक्ति को अगर देते हैं तो आप उन्हें फील करवाते हैं कि हाँ आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ऐसे में टाइम को भी देना, साथ ही साथ मनी का जो मैटर होता है उसको भी ध्यान देना, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी.
आमतौर पर आज के समय में बहुत सारे परिवार हैं जिसमें दोनों लोग काम करते हैं.
बिल्कुल.
शायद एक व्यक्ति पार्ट टाइम काम कर रहा हो. कई बार जो लोग हैं जो कि जैसे स्कूल्स में काम करते हैं तो वो कम पीरियड के लिए होता है और दूसरी जॉब में ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, लेकिन फिर जो बाकी बचा हुआ समय है उस समय में वो घर के दूसरे काम करते हैं जिससे कि ज़िंदगी दोनों के लिए आसान बन जाए.
बिल्कुल.
ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर एक ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी है, एक ही व्यक्ति को नाम मान मिल रहा है, एक ही व्यक्ति सिर्फ पैसा कमा रहा है और दूसरे व्यक्ति को ये दिखाने की कोशिश हो रही है या दूसरा व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि इस चीज़ में मेरी कोई स्टेक नहीं है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे ये बातें शुरू होती हैं.
बिल्कुल.
अगर दो लोग सोचते हैं कि हम किस प्रकार से जो घर की चीज़ें करनी है, चाहे पैसा कमाना है सबके लिए, चाहे बाहर जाके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया जाता। जहाँ पर वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है तो फिर उसमें हिसाब किताब होना शुरू हो जाता है। और एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैंने इतने घंटे दिए, इतना आया, उसमें से मेरे पे कितना खर्च हुआ, दूसरों पे कितना खर्च हुआ। फिर हर चीज़ जो है वो उस हिसाब किताब के साथ चलती है। हाँ, पैसा एक हिस्सा है, लेकिन अगर उससे आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है, कुछ खुशी मिलती है, लोगों से आपकी बातचीत होती है, एक पोजीशन मिलती है सोसाइटी में, और आपकी ग्रोथ एज अ पर्सन होती है, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो घर में है अगर वो काम नहीं कर रहा, या अगर जैसा कई बार सोचा जाता है कि वो वैसा काम कर रहा है जिससे पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने की, चाहे वो हॉबीज़ हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे सोशल वर्क ही हो, जिससे कि उसे अपनी एक पहचान मिले, वो ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे एक पार्टनर को ये लगता है कि वो दूसरे से किसी कारण से कम है, या उसकी प्रतिभाओं को रोका गया है, या कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक, अगर स्कूटर का पहिया हो और एक ट्रैक्टर का पहिया हो तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, तो दोनों का समान होना ज़रूरी हो जाता है, मोर और लेस, एक व्यक्ति एक चीज़ में ज़्यादा, एक व्यक्ति दूसरे चीज़ में ज़्यादा। और वहाँ पे हालांकि हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम आंकलन करें तो वो व्यक्ति जो घर में काम कर रहा है, खाना बना रहा है, साफ सफाई कर रहा है, घर की चौकीदारी कर रहा है और कुछ नहीं है, तो या बच्चों को पाल रहा है, तो उसकी भी पे अगर हम लगाएं तो शायद उतनी ही होगी उस व्यक्ति के बनिस्पत जो कि बाहर जाके काम कर रहा। अगर आपको उस चीज़ के लिए किसी और को लेना पड़े, और हम क्योंकि उस व्यक्ति को, क्योंकि घर का मेंबर है, पे नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस व्यक्ति को कम समझें। और ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए स्पेशली, अगर वो माँ बन रही हैं तो उसके लिए तो पैसा देके भी आप नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि कोई काम दूसरे से छोटा है, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है। वहाँ पे अगर समान होके चल पाए तो उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि दूसरा व्यक्ति जाके शायद ऑफिस में गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये भी कई बार होता है कि मैं घर में बैठी बोर हो रही हूँ और आप पता नहीं वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सो दोनों अगर एक दूसरे के काम को समझ पाए, डिस्कस कर पाए, और अगर एक दूसरे से सलाह लें, तो दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ में उतना इंटरेस्टेड होगा। जहाँ पे संवाद ख़त्म हो जाता है
जी,
डिस्कशंस ख़त्म हो जाती हैं, या दूसरे की जो कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश ख़त्म हो जाती है, और इंसान बहुत ज़्यादा मी में खो जाता है, मी टाइम में नहीं। मी टाइम ज़रूरी है लेकिन एक ख़ास चीज़ के लिए, लेकिन अगर अपने में ही खो जाता है और दूसरे की परवाह नहीं करता, वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर आनी शुरू होती हैं।
जी डॉक्टर साहब, एक समय आता है जब परिवार बढ़ने लगता है, बच्चे होने लगते हैं, एक ऐसा समय आता है जब जिम्मेवारियां और डबल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग शुरू होती है दो तीन साल के बाद में, स्कूलिंग है, उनके फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको पैसे जमा करने होते हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बार पे पैकेज को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ जाए, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इतना आसान भी नहीं होता। ऐसे में किस तरह से अपने माइंड को स्टेबल रख कर फिर सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली बढ़ रही है तो ऑफिस वाले आपको डबल पैसा देने लगेंगे। सिचुएशंस तो वही के वही हैं, पैसे भी उतने के उतने ही हैं, लेकिन माइंड में कौन सी ऐसी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है जिससे हम सेटिस्फाइड रहकर और फिर सक्सेस की ओर आगे बढ़े, ना कि हम बौखला जाएं। इन दोनों में कैसे अंतर होगा?
अगर हम अपने समाज की तरफ देखें, बहुत ज़्यादा पहले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आज से करीबन 25 वर्ष पहले पे भी जाएं, जिस समय में लोग काम भी करते थे और लोगों की पेज में डिफरेंसेस भी होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे लेकिन ज़रूर होते थे, जो एक ऑफिस में लोएस्ट लेवल पे काम करता था और जो हाईएस्ट पे लॉबी पे काम करते थे, डिफरेंसेस तब भी थे अब भी हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने को बोझ नहीं समझा जाता था।
करेक्ट।
घर की ज़रूरतों को पूरा करना बोझ नहीं समझा जाता था। और अगर हम ध्यान से मूल्यांकन करें तो अब भी वो बोझ नहीं है। अगर हम एक खास तरह की चीज़ ही करना चाहते हैं, असल में क्या हुआ है कि एक्सपोजर ज़्यादा हुए हैं और उसकी वजह से हर किसी की महत्वाकांक्षाएँ आगे बढ़ी हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि एक खास तरह के स्कूल में एक खास तरह की एक्टिविटीज़ के साथ ही हर बच्चे को दी जाए। पॉसिबल नहीं भी होता। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो मैं आपको एक बात इस मंच से साफ कह सकता हूँ बहुत सालों के एक्सपीरियंस में, कि अगर आप बच्चे को प्यार दे रहे हैं और बच्चे को बेसिक शिक्षा मिल रही है, और अगर आप उसे सशक्त बनाने में जो लाइफ स्किल्स हैं वो उसे सिखा रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो दूसरे किसी भी बच्चे से पीछे रह जाए। हम कई बार ये समझते हैं कि एक जगह का ठप्पा लगने से वो व्यक्ति सक्सेसफुल बन गया। दिस इज नॉट द ट्रूथ। बहुत सारे लोग जिनकी बैकिंग किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की, किसी खास स्कूल की या किसी खास तरह की बैकग्राउंड की नहीं है, उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ पाया है।
उल्टा मैं तो ये कहूँगी कि आज बड़े बड़े स्कूल्स में हम बच्चों को डालने के लिए डबल काम कर रहे होते हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं ताकि उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर सके, लेकिन वही बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास उनको एसी रूम्स मिलता है पढ़ाई करने के लिए, उनको छोटी उम्र में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है जिसके वजह से वो इंटरनेट सैवी बन जाते हैं, गेमिंग पार्लर्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी बड़ी स्कूल उतने ही ज़्यादा आप बुरी चीज़ों को भी एक्सपोज अपने आप को करने लगते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि अगर आपने बहुत बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दिया है तो उसका भविष्य सिक्योर हो गया है, ऐसा नहीं होता जितना मैंने देखा है आसपास।
और ना एक और बड़ी बात जो आजकल भूल रहे हैं कि किसी का बचपन बार बार नहीं आना।
करेक्ट।
और आपका समय उसके बचपन के साथ बार बार नहीं आना। और बाद में बच्चे को ये याद रहता है कि मेरे साथ माँ बाप ने समय कितना बताया, किस जगह पे हमने मस्ती की, कितनी बड़ी क्रूज में मस्ती की उतना नहीं याद आता, लेकिन कितना समय उन्होंने मेरे साथ बिताया, कितना मैं खुश रहा, किस जगह के पार्क पे गया, वो पार्क चाहे आपके घर के साथ का हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी उतनी में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उन चीज़ों में हर समय पे पैकेज को सोचते रहना वो अपनी शक्ति को क्षीण करने वाली बात है।
करेक्ट।
और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये बात भी अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ खास तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो आप अभी से उस चीज़ को प्लान करना शुरू कर दो, और अगर नहीं मिली या लगता है कि उस तरफ नहीं जा पा रहे तो ज़िंदगी जैसे रुक सी जाएगी। विच इज़ अगेन नॉट द ट्रूथ।
करेक्ट।
तो क्षण का, उस समय का मज़ा लेना और उस समय में जो है उसको सही रूप से यूटिलाइज कर पाना, और ख़ास तौर पे समय को, जैसा आपने कहा था, समय को दे पाना अपने परिवार के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार वो जो समय है उसकी वजह से जो आपके और तरह के तनाव हो रहे होते हैं या स्ट्रेस से, चाहे काम में है या बाहर के किसी और ऐसी सिचुएशन में है, वो भी कम हो जाते हैं। हाँ, कई बार ये ज़रूर है कि कुछ ख़ास तरह की काम जैसे कि बिजनेसेस हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पे कि फैमिली बिजनेसेस हैं और वहाँ पे व्यक्ति को जो दूसरे कर रहे हैं उसके साथ ही चलने की ज़रूरत हो जाती है और उसको कई बार ग्रो करने की ज़रूरत हो जाती है, या वहाँ पे आपकी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनके साथ डील करना पड़ जाता है या उन्हें इम्प्रेस करना पड़ जाता है या अपनी जगह बनाने की एक जद्दोजहद कह लीजिए वो करनी पड़ जाती है, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जो यूथ को कई बार फेस करनी पड़ती है। एंड इंक्रीजिंगली हालांकि यंग पीपल को एज सक्सेसफुल पीपल, एज हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, या इज्जत देने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा ज़रूर है कि उनको वो अपनी जगह कई बार लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक तनाव हो सकता है। बट आई वुड से कि अगर उनका फैमिली लाइफ ठीक चल रही है तो वो भी बैलेंस हो जाता है। कई बार उस तनाव को वो घर में ले आते हैं और वहाँ भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर इस वजह से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो अगर एक जगह पे किसी खास समय में कमी है तो कोशिश करें कि बाकी चीज़ें दुरुस्त रहें ताकि आपको वो सपोर्ट कर।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात जो आपने कही कि आपके खुद के उम्र से ज़्यादा जो बड़े लोग होते हैं वो शायद आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, ऐसे में ये यूथ की अगर हम बात करें कि हेड्स ऑफ द कंपनी कई बार आजकल यंगस्टर्स बनते जा रहे हैं, 26, 27 एंड दे हेड द होल कंपनी। उनका एक्सपीरियंस तो उतना बड़ा नहीं होता लेकिन शायद उनके काम करने का तरीका इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है जिस वजह से उन्हें चुना जाता होगा। ऐसे में अपनी एग्जिस्टेंस को क्रिएट करके रखना और फिर आगे बढ़ते रहना और लोगों को उतना ही रिस्पेक्ट देकर फिर उनसे काम भी उतना ही निकलवाना, ये कैसे पॉसिबल है?
देखिए, कुछ खास तरह के प्रोफेशंस हैं जैसे आईटी कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे कि उम्र की वजह से उनको उसकी ज़्यादा नॉलेज है।
करेक्ट,
बड़ी उम्र के लोग शायद आईटी के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ या स्टार्टअप्स में जो डेंजर्स इन्वॉल्व हैं उसकी वजह से ट्रायल आउट नहीं करते, लेकिन वो एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो वहाँ पे जब ऐसी चीज़ होती है तो आपकी स्किल्स जो हैं वो उस व्यक्ति से जो कि उम्र में आपसे बड़ा है वो ऑलरेडी अच्छी हैं,
बिल्कुल,
तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। मुश्किल कहाँ आती है, जहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे फादर ने अपने यंग सन को बिना खास एक्सपीरियंस के
करेक्ट
वहाँ पे एक रोल दे दिया, अहम रोल, लेकिन उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है।
बिल्कुल,
सो आई वुड से कि वहाँ पे एक ह्यूमिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है।
करेक्ट,
और ह्यूमिलिटी के साथ साथ दूसरों से हमेशा सीखते रहने की इच्छा और साथ साथ जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसका उसको रिस्पेक्ट देना और उसका दूसरों के सामने खास तौर पे उसको रिस्पेक्ट देना और ईगो को अपनी बिल्कुल कम रखना,
दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन लोगों के बलबूते पर चल रही है जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं।
बिल्कुल,
आपके अपनी स्किल्स उतनी शायद नहीं है।
करेक्ट,
शायद समय के साथ साथ वो ग्रो हो
जाएंगे,
लेकिन तब तक जो दूसरे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको एटलीस्ट उसका सही मुआवजा इन टर्म्स ऑफ इज्जत
जी,
इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
जी,
वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड में हमने कई सारी बातों को जाना, लेकिन मुझे सबसे खास बात ये लगी कि अगर कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हम पर आ जाए, लेकिन अगर हम अपने स्पाउस के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें कि भले ही उनको थोड़ा कम समय भी दें लेकिन वो कम समय को क्वालिटी टाइम दें, तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप्स में वो कम होने लगेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक्स अ लॉट।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हम अपनी फैमिली लाइफ और अपनी ऑफिशियल लाइफ इन दोनों के बीच में सामंजस्य क्रिएट कर पाएँ। हमने ये भी जाना कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करें, अपने आप को बदलाव करने की ज़रूरत है, दूसरों को एक्सप्रेस करने से आपका जो दुख है वो कम होगा ना कि बढ़ेगा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमें एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो पीसफुल है तो कहीं ना कहीं हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। कुछ समय अपने आप के साथ में भी बिताइए और कुछ समय अपने परिवार के साथ में भी बिताइए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।